पाठ 25, आगमन के आंदोलन का उदाहरण। मैंने कई एक दल में लोगों को देखा जो एकता के सूत्र में बांधे हुए सा दिखाई दिए। इनमें से बहुत लोग पूरा अंधकार में थे। उनकी गति पृथ्वी के नीचे की ओर जा रही थी या पतन की ओर, और यीशु के साथ उनका कोई संबंध न था। मैंने कुछ लोगों को झुंडों में भी देखा जिनके चेहरे प्रकाशमान थे और आंखें स्वर्ग की ओर उठी थीं। सूर्य की रोशनी के समान उन्हें यीशु से मिल रही थी। इस समय बुरे दूत जो अंधकार में थे उन्हें घिरे हुए थे। मैंने स्वर्गदूत को बड़े जोर से शब्द करते सुना कि परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय का समय आ गया है। जो लोग संवाद को ग्रहण करते थे उन्हें महिमा की ज्योति ने प्रकाशमान कर रखा था। कुछ लोग जो अंधकार में थे उन्हें भी ज्योति मिली और वे भी खुश थे। पर दूसरों ने कहा कि ये हमें धोखा में डालने के लिए अगुवाई कर रहा है। उनके बीच से प्रकाश बूझ गया और वे अंधकार में पड़े रहे। जिन लोगों ने यीशु से ज्योति पाई वे इस बात से आनंद करने लगे कि उन्हें बहुमूल्य ज्योति मिल गई है। उनके चेहरे पवित्र आनंद से तथा खुशी से चमक उठे। उनको बहुत आनंद से स्वर्ग की ओर यीशु को ताकने कहा गया। स्वर्गदूतों की आवाज के साथ उनकी आवाज भी सुनाई दी, ईश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके व्यय करने का समय आ गया है। जैसे ये आवाज हो रही थी तो मैंने उन लोगों को देखा जो अंधकार में थे। वे अपने सिरों और पैरों को पटक रहे थे। बहुत लोग जो पवित्र ज्योति से बांधे हुए थे खुश नजर आ रहे थे। वे अंधकार में रहने वालों से नाता तोड़कर अलग हो गए। जब लोग अंधकार रूपी रस्सी की बंधन को तोड़कर अलग हो रहे थे तो ये लोग जो अंधकार ही में रहना पसंद करते थे वे जाने वाले लोगों के पास जा जाकर मीठी भाषा से कहते थे कि मत जाओ। पर दूसरे लोग घुरकते थे, गुस्सा चेहरा बनाकर देखते और डरवाते थे। वे ये देख रहे थे कि उनका दल कमजोर पड़ रहा है। वे सांत्वना देकर कहते थे कि ईश्वर हमारे साथ है, हम सच्चाई में हैं, हमारे पास ज्योति है, तुम लोग क्यों भाग रहे हो? तब मैंने पूछा कि ये कौन लोग हैं। तब मुझे बताया गया कि ये पादरी प्रचारक और लोगों के नेता हैं जिन्होंने प्रकाश को इनकार कर दूसरों को भी ग्रहण करने नहीं दिया। मैंने देखा कि जो लोग प्रकाश को चाह रहे थे वे बहुत रुचि के साथ स्वर्ग की ओर देखकर यीशु के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसी समय एक बादल उड़ता हुआ आया और उनकी दृष्टि को ढाक दिया तो वे बहुत उदास हो गए। मैंने बादल आने का कारण पूछा। मुझे दिखाया गया कि ये बादल नहीं पर उनका निरुत्साह था। जिस समय यीशु को आने की बाट जोह रहे थे और वो नहीं आया, घोर निराशा उनके मन में छा गया। जिन प्रचारक और नेताओं के विषय मैंने पहले पूछा था वे लोग तो बहुत खुश हो रहे थे। जिन्होंने ज्योति को इनकार किया था वे शैतान के साथ विजय मना रहे थे और बहुत खुश थे। तब मैंने दूसरे दूत को ये कहते सुना कि गिर पड़ा, वो बड़ा बाबुल गिर पड़ा। फिर से उन उदास में पड़े हुए लोगों के चेहरे में ज्योति चमकी और वे पुनः जोश के साथ यीशु को स्वर्ग से आते हुए देखने की इच्छा करने लगे। मैंने दूसरा दूत के साथ बहुत सारे दूतों को बातें करते हुए देखा। वे सब मिलकर दूसरा दूत के साथ चिल्लाने लगे, बड़ा बाबुल गिर पड़ा। ये आवाज चारों ओर सुनाई पड़ी। जिन लोगों ने संवाद को ग्रहण किया था उन पर और अधिक तेज से चमकने लगा। वे स्वर्गदूतों के साथ मिलकर बड़े जोर के शब्दों से पुकारने लगे। ये लोग जो ज्योति को ग्रहण करना नहीं चाहते थे उन्होंने इनको कोसना और हंसी मजाक करना शुरू कर दिया। परंतु ईश्वर के दूतों ने इनके ऊपर अपने पंखों को पसारे हुए था, जबकि शैतान और बुरे दूत इन्हें अंधकार ही में डाले रहना चाहते थे। वे इन्हें स्वर्ग की ज्योति को ग्रहण करने देना नहीं चाहते थे।
जिन लोगों पर हंसी मजाक हो रही थी उनको कहा गया कि उनके बीच से निकल आओ और उन अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। तब एक दल के लोग जिन्होंने इस आवाज को सुनकर यीशु के आगमन को ग्रहण किया था अंधकार का बंधन को तोड़कर उन्हें छोड़कर उन लोगों में शामिल हुए जो आनंद के साथ यीशु की ज्योति पाई थी। मैंने उन लोगों की वेदनापूर्ण प्रार्थना भी सुनी जो अब तक अंधकार का दल में से निकलकर आना चाहते थे। पदारी और प्रचारक लोग इनके दलों में घूम घूम कर इसी दल में रहने के लिए अर्जी करते थे, पर जो निकलकर आना चाहते थे उनकी गिड़गिड़ाहट प्रार्थना को मैंने सुना। मैंने फिर देखा कि ये प्रार्थना करने वाले दल उनसे सहायता मांगने लगे जो ईश्वर के साथ रहकर आनंद कर रहे थे। तब उनके लिए स्वर्ग से जवाब आया कि तुम लोग उनमें से निकल आओ। स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष कर रहे थे वे अंत में बड़ी भीड़ का मोह छोड़कर निकलने में सफल हुए। अंधकार में रहने के लिए जो जकड़ा हुआ बंधन था उसे तोड़ डाले। लोगों के कहने पर कि ईश्वर हमारे साथ है, सच्चाई इसमें है, उसकी परवाह न की, वे अंत में निकलकर चले ही आए और उस दल में शामिल हो गए जहां सच्चाई की ज्योति चमक रही थी। वे अपने सिरों को स्वर्ग की ओर उठाकर ईश्वर की महिमा के गीत गाते थे। ईश्वर की आत्मा उनके साथ थी, वे एकता के बंधन में थे और स्वर्ग का प्रकाश से प्रकाशमान थे। इस दल के आसपास भी कुछ लोग तो आए, पर उन्होंने इनके साथ शामिल होना ना चाहा, क्योंकि उन पर स्वर्गीय ज्योति का कुछ प्रभाव नहीं पड़ा था। जिन्होंने नई ज्योति को पसंद किया था वे ऊपर की ओर ताकने लगे। यीशु ने उन पर सहानुभूति दिखाई। वे यीशु को पृथ्वी में आने की बाट जोह रहे थे। वे पृथ्वी की ओर अपना मन लगाना नहीं चाहते थे। फिर मैंने इन प्रत्याशियों के ऊपर एक उड़ता हुआ बादल देखा जो आकर उनकी नजरों को छिपा दिया। तब मैंने देखा कि उन्होंने अपनी थकी मंदी आंखों को नीचे झुका दिया। इस बदलाहट का कारण मैंने पूछा। मेरा स्वर्गदूत ने बताया कि वे फिर अपनी आशा पूरी होते न देखकर उदास हो गए। अब तक यीशु पृथ्वी में नहीं आया था। उन्हें यीशु के लिए दुख सहना था और कड़ी परीक्षाओं से गुजरना भी था। उन्हें लोगों की ओर से दी गई गलतियों और परंपरा की दस्तूरों को छोड़ना था और संपूर्ण रूप से ईश्वर और उसके वचन पर समर्पित हो जाना था। उन्हें शुद्ध और पवित्र होना था, जैसा सफेद बर्फ होती है। जो लोग इस कड़वी सताहट से होकर गुजरेंगे उन्हें ही अनंत विजय प्राप्त होगी। यीशु पृथ्वी पर मंदिर को आग से शुद्ध करने नहीं आया, जैसा कि आनंद से बाट जोहने वाले लोग चाह रहे थे। वे भविष्यवाणी की घटना का हिसाब करने में तो गलत नहीं कर रहे थे, पर घटना का नामकरण करने में चूक कर रहे थे। भविष्यवाणी के मुताबिक समय 1844 ईस्वी में पूरा हो रहा था। उनकी जो गलती थी वह यह है कि पवित्र स्थान क्या है और इसकी शुद्धि कैसे की जाए। यीशु का महापवित्र स्थान में समय का पूरा होने पर प्रवेश करने जा रहा था। मैंने फिर उन हताश नीरस लोगों को देखा तो वे उदास दिखाई दिए। उन्होंने अपना विश्वास की जांच की और भविष्यवाणी का समय का हिसाब लगाने को दोहराया, और फिर भी गलती नहीं मिली। समय तो पूरा हो गया था, पर अपने त्राणकर्ता को नहीं पाया। वह गया तो कहां गया? उनकी उदासी की तुलना उस समय से की जा सकती है जब यीशु कब्र से जी उठा तो उन्होंने उसे वहां नहीं पाया। और मरियम बोलने लगी, वे मेरे प्रभु को कहां उठाकर ले गए? मैं नहीं जानती कि उन्होंने उसे कहां रखा। स्वर्गदूत आकर बोला कि यीशु जी उठा है और वह गलील गया है। मैंने देखा कि यीशु उदास करने वालों को बड़ी सहानुभूति से देखा, और उसने दूतों को भेजकर बताया कि वे कहां उसे पाएंगे और उसके पीछे चलेंगे। उन्हें समझा दो कि पृथ्वी में पवित्र स्थान अब नहीं है, वो स्वर्ग के महापवित्र स्थान को शुद्ध करने गया है। इस्राएलियों के लिए वहां वो विचवाई करेगा और अपने पिता से राज्य प्राप्त करेगा। इसके बाद वो पृथ्वी पर आकर अपने लोगों को ले जाएगा। वहां वे सदा उसके साथ रहेंगे। मैंने उस दृश्य को भी देखा जब यीशु विजयपूर्वक गधी का बच्चा पर चढ़कर यरूशलेम गया था। यीशु के चेले सोच रहे थे कि यीशु उस वक्त पृथ्वी पर राज्य करेगा। उन्होंने यीशु को बहुत आनंद के साथ साथ दिया था। वे पेड़ की डालियां काटकर रास्ते पर बिछा रहे थे और कोई अपने कपड़े भी डाल रहे थे। बहुत जोश के साथ उसके पीछे पीछे जा रहे थे और साथ में चिल्ला भी रहे थे। होशाना, दाऊद का पुत्र की होशाना बोल रहे थे। धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, उसकी सबसे ऊंचे स्थान में होशाना हो। इस चिल्लाहट से फारसी लोग घबरा गए। उन्होंने यीशु को इन्हें चुप कराने को कहा। उसने उन्हें उत्तर दिया, यदि वे चुप रहेंगे तो पत्थर इनके बदले चिल्ला उठेगा। जकरिया की ये भविष्यवाणी पूरी हुई। मैंने चेलों को निराशा में डूबा हुआ देखा। कुछ समय पहले वे यीशु के क्रूस तक गए थे। वहां उन्होंने यीशु को क्रूस पर बड़ी क्रूरता से क्रूसघात करते हुए देखा था। उसकी दयनीय मृत्यु को वे देख चुके थे और उन्होंने उसे कब्र में रखा था। उनका मन शोक से डूबा हुआ था। उनकी आशा यीशु की मृत्यु के बाद खत्म हो चली थी। परंतु यीशु जी उठकर अपने चेलों को दिखाई दिया और उनके साथ रोटी तोड़ी तो उनकी आशा लौट गई। उन्होंने यीशु को खोया था पर पुनः मिल गया। मैंने दर्शन में देखा कि 1844 ईस्वी में जो लोग हताश नीरस हुए थे उसकी तुलना में चेलों का उदास कम था। पहला और दूसरा दूतों के मुताबिक भविष्यवाणी पूरी हुई। ईश्वर का काम पूरा करने के लिए उन्हें ठीक समय पर संवाद दिया गया। आधारित वचन हबक्कूक 2:1-3।